আমার গৌরে লোরে, গৌরে লোরে সোনা নদী আয়, উলুর ধ্বনির হরির ধ্বনির শব্দ শোনা যায়। আমার গৌরে লোরে, গৌরে লোরে সোনার নূপুর পায়, রুনু জুনু রুনু জুনুর শব্দ শোনা যায়। আমার গৌরে লোরে, গৌরে লোরে সোনা নদী আয়, উলুর ধ্বনির হরির ধ্বনির শব্দ শোনা যায়। আমার গৌরে লোরে, গৌরে লো রাতে চরে সেজে নারায়ণ, গৌরে লো রাতে চরে সেজে নারায়ণ। ও আমার হৃদয়ে পেতে রেখেছি, ও আমার হৃদয়ে পেতে রেখেছি ফুলের সিংহাসন। আমার গৌরে লো রে, গৌরে লো রে সোনা নদী আয়, উলুর ধ্বনির হরির ধ্বনির শব্দ শোনা যায়। আমার গৌরে লো রে, বলো গৌরে লো রে সোনা নদী আয়, উলুর ধ্বনির হরির ধ্বনির শব্দ শোনা যায়। আমার গৌরে লো রে, গৌর আমার পরম ব্রহ্মা নারায়ণ, গৌর আমার পরম ব্রহ্ম স্বয়ং নারায়ণ। তোমরা নাম করো জপ করো, নাম করো জপ করো, নাম করো জপ করো, নাম করো জপ করো, চরণ করো সার। আমার গৌর এলো রে, বলো গৌর এলো রে সোনা নদী আয়, উলুর ধ্বনির হরির ধ্বনির শব্দ শোনা যায়। আমার গৌর এলো রে, বলো গৌর এলো রে সোনা নদী আয়, উলুর ধ্বনির হরির ধ্বনির শব্দ শোনা যায়। আমার গৌর এলো রে, আমার গৌর এলো রে, আমার গৌর এলো রে। জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, গোপী জন বল্লভ গিরিপদ ধারি, জয় গোপী জন বল্লভ গিরিপদ ধারি, যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন, যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন, যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন, যশোদানন্দন ব্রজ জন রঞ্জন। যমুনা তীর বনচারী, যমুনা তীর বনচারী, জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারী, জয় রাধা মাধব हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
সচ্চিদানন্দ শিল ভক্তি ঠাকুর কি যায় অনন্ত বড়ি বৈষ্ণব সিন্ধু কি যায় নামাচার্য শিল উদাস ঠাকুর কি যায় প্রেম শ্রী প্রভু শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শিবাদ শিবাশাদি শ্রী গৌর ভক্ত বিন্দু কি যায় গঙ্গা মায় কি যায় যমুনা মায় কি যায় মণ্ডল বৃন্দাবন ধাম কি যায় মায়াপুর নবদ্বীপ ধাম কি যায় পুরুষোত্তম কত জগন্নাথপুরী ধাম কি যায় ভক্তি দেবী তুলসী মহারাণী কি যায় গ্রন্থরা শ্রীমদ ভাগবত কি যায় জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বোল জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি বোল জয় নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি 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 বোল হরে কৃষ্ণ ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय নারায়ণং নমস্কৃতং নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়ে নষ্টপ্রায়েষু অবদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবায় ভগবতীর উত্তম শ্লোকে ভক্তির্ভবতী নৈষ্ঠিকী গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ ভাগবতম দশম স্কন্ধ অষ্টম অধ্যায় শ্লোক সংখ্যা 10849 বল ৫৯ जातयो नौ महादेवे भूवि विश्वेश्वरे हरौ भक्ति स्वा परमालोके व्ययञ्ज दुर्गतिं तरे जातयो नौ महादेवे जातयो नौ महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्तिष्वत् परमालोके व्ययञ्ज दुर्गतिं तरे जातयो नौ महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्तिष्वत् परमालोके व्ययञ्ज दुर्गतिं तरे जातयो नौ महादेवे जातयो नौ महादेवे भुवि विश्वेश्वरे हरौ भक्तिष्वात् परमालोके व्ययञ्जो दुर्गतिं तरे that शब्दार्थ इस प्रकार है जातयो जन्म लेकर नौ पति पत्नी दोनों द्रोण तथा धरा महादेवे परम पुरुष भगवान में भूवि पृथ्वी पर विश्व ईश्वरे सभी लोगों के स्वामी में हरौ हरि में भक्ति भक्ति स्यात् फैलेगी परमा जीवन का चरम लक्ष्य लोके
संसार में यया जिससे अजह आसानी से दुर्गतिम दुखमय जीवन से करे बच सकता है और उद्धार हो सकता है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद। द्रोण तथा धरा ने कहा, कृपा करके हमें अनुमति दें कि हम पृथ्वी पर जन्म लें जिससे परब्रह्म परम नियंता तथा समस्त लोकों के स्वामी भगवान भी प्रकट हो और भक्ति का प्रचार करें जो जीवन का चरम लक्ष्य है और जिसे ग्रहण करके इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले लोग सरलता से भौतिकतावादी जीवन की दुखमय स्थिति से उबर सके। तात्पर्य, द्रोण के इस कथन से स्पष्टतया इंगित होता है कि द्रोण तथा धरा कृष्ण के नित्य पिता तथा माता है। जब भी कृष्ण के आविर्भाव की आवश्यकता होती है तो पहले द्रोण तथा धरा प्रकट होते हैं और तब कृष्ण प्रकट होते हैं। भगवद गीता के चौथे अध्याय के छठवें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि उनका जन्म सामान्य नहीं होता, जन्म कर्म च में दिव्यम। अजोपि सन्य व्यात्मा भूतानि निश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामी स्वामधिष्ठाय संभावम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा हूं और मेरा दिव्य शरीर कभी विनष्ट नहीं होता और समस्त जीवों का स्वामी मैं ही हूं, किंतु फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य शरीर में प्रकट होता हूं। कृष्ण के प्रकट होने के पूर्व द्रोण तथा धरा उत्पन्न होते हैं जिससे वे उनके पिता माता बन सके। ये ही नंद महाराज और उनकी पत्नी यशोदा के रूप में प्रकट हुए। दूसरे शब्दों में साधन सिद्ध जीव कभी भी कृष्ण के पिता या माता नहीं बन सकते क्योंकि कृष्ण के माता पिता पहले से निर्दिष्ट है, किंतु नंद महाराज तथा माता यशोदा और उनके साथियों के द्वारा प्रदर्शित नियमों का अनुसरण करके वृंदावनवासी जो कि सामान्य जीव है उन्हीं जैसा स्नेह प्राप्त कर सकते हैं। जब द्रोण तथा धरा से संतान उत्पन्न करने के लिए कहा गया तो उन्होंने इस संसार में आने और भगवान कृष्ण को पुत्र रूप पाने के लिए चुना। कृष्ण के प्राकट्य का अर्थ है परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम्। जब भी कृष्ण आते हैं तो वे जीवन की परम लक्ष्य भक्ति का वितरण करते हैं। वे इस कार्य के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं क्योंकि भक्ति को प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति भौतिक जगत के कष्टों से निस्तार नहीं पा सकता, जहां जीव अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। दुखारयम अशाश्वतम भगवान भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसस्थानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस जगत के सारे जीव मेरे नित्य अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत छहों इंद्रियों के साथ कठिन संघर्ष करते रहते हैं। सारे जीव सुखी बनने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, किंतु भक्ति ग्रहण किए बिना यह सुख संभव नहीं है। कृष्ण ने भगवद गीता के 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में स्पष्ट कहा है, अश्रद्धानाम पुरुषाम धर्मस्यास परंतप अप्राप्यताम नाम निवर्तन्ते दुख्यु संसार वर्तमनि। हे शत्रुओं के विजेता, जो भक्ति के मार्ग में श्रद्धावान नहीं है वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के लिए लौट आते हैं। मूर्ख लोगों को पता नहीं रहता कि यदि कृष्ण के उपदेशों का पालन नहीं किया गया तो यहाँ पर जीवन कितना खतरनाक है। इसीलिए कृष्ण भामरानुत आंदोलन का शुभारंभ किया गया है जिससे लोग कृष्ण भामरानुत का अभ्यास करके इस भौतिक जगत के खतरनाक जीवन से बच सके। कृष्ण भामरानुत को मानने या न मानने का प्रश्न ही नहीं उठता, यह ऐच्छिक नहीं है अपितु अनिवार्य है। यदि हम कृष्ण भामरानुत स्वीकार नहीं करते तो हमारा जीवन अत्यंत संकट में है। भगवद गीता में हर बात ठीक से बतलाई गई है। अतः संसार की दुखमय अवस्था से छूटने के लिए भगवद गीता यथारूप आत्मिक अध्ययन करना होगा। भगवद गीता समझ लेने के बाद श्रीमद् भागवत और तब चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करना चाहिए। इसीलिए हम इन अमूल्य ग्रंथों को सारे जगत समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे लोग पढ़कर दुखमय बद्ध जीवन से निस्तार पाकर सुखी बने।
कथामायं ददाति शापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीचित्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं शकृजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं शाद्वैतं शावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीशतान्वितंश्च नमयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चत्वदेशताडिने नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतिशे नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते भक्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विशोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौरभक्त बिंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। इस अध्याय में हम लोग अंतिम भी पहुंच गए और एक दो श्लोक बाकी। कल कमलोचन प्रभु विस्तृत रूप से श्लोकों पर वर्णन भी किए। तो आज का जो श्लोक है इसमें श्री प्रभुपाद जी एकदम अंतिम में बताए कि तीनों ग्रंथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस प्रसंग में श्री प्रभुपाद जी एक बार लंदन में, मैं कल रात को ही पढ़ रहा था, उसमें वर्णन किए कि श्री प्रभुपाद जी एक बार लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मतलब पूरा जितने सारे पत्रकार लोग हैं यूरोप का, बहुत बड़े बड़े पत्रकार लोग को सबको उन्होंने बुलाया, तो बहुत सारे पत्रकार लोग आए श्री प्रभुपाद जी को इंटरव्यू लेने के लिए। तो जब इंटरव्यू चल रहे थे, इसी इंटरव्यू चलने का समय कोई एक पत्रकार श्री प्रभुपाद जी को इसी तरीके से प्रश्न पूछने लगे कि स्वामी जी, मोस्ट ऑफ योर फॉलोअर्स दे आर मोस्टली इलिटरेट। स्वामी जी, मोस्ट ऑफ योर फॉलोअर्स दे आर मोस्टली इलिटरेट, मतलब इलिटरेट का अर्थ था मूर्ख व्यक्ति। तो प्रभुपाद जी इसी तरीके से पत्रकार का मुख से जब ये वचन सुन लिए, प्रभुपाद जी फिर आवड़ी पर पूछे, कैन यू रिपीट इन? तो प्रभुपाद जी ने कहा दिए कि आप आवड़ी पर बता सकते हैं। तो पत्रकार ने बताया कि स्वामी जी, आई एम टेलिंग यू दैट मोस्ट ऑफ योर फॉलोअर्स आर मोस्टली इलिटरेट, मतलब आपका जितने सारे फॉलोअर्स आए इधर, उसमें से ज्यादा सब अशिक्षित तथा मूर्ख व्यक्ति है। प्रभुपाद जी ने ये बात को सुनकर बड़ा क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर प्रभुपाद जी पत्रकार का कह दिए कि Why you are telling like deriving words? आपने किस तरीके से अर्थ को आप समझ रहे हो? तो पत्रकार ने कहा कि मैंने देखा हूं जितने सारे आपका सब फॉलोअर इधर घूम रहा है, कोई भी व्यक्ति इसमें कलेश तो पूछा नहीं। तो पत्रकार को ये प्रश्न सुनकर गोपाल जी फिर हंसने लगे जब प्रभुपाद जी हंसना चालू की तो पत्रकार ने सोचा कि मैंने जो बोला ये महाराज जी शायद लगता है मेरा बात को एकदम स्वीकार कर लिए। तो प्रभुपाद जी फिर उनको पूछे जे मैं हंसता हूँ इसके लिए कि आपका ये जो प्रश्न है प्रश्न सुनकर मैं हंसता हूँ, आप सोच रहे हो कि आपने जो भी कुछ बोला मैंने इसको स्वीकार कर लिया हो, लेकिन नहीं है। ये आवर फॉलोअर्स दे आर एटलीस्ट बीएससी डिग्री, दे गॉट एटलीस्ट बीएससी डिग्री। तो पत्रकार एकदम सरप्राइज हो गए, एकदम अचंभित हो गए कि सुन पूछने लगे कि स्वामी जी मैंने बोला कि आपका मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स दे आर इलिटरेट, सब अशिक्षित है, मूर्ख व्यक्ति है, लेकिन आप कह दिए कि ये लोग सब बीएससी का अर्थ होता है जैसा कि भौतिक दुनिया में कोई पढ़ाई कर रहा है तो उनको पता होगा कि बीए का अर्थ होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स और बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस। तो गोपाल जी ने बताया कि आवर फॉलोअर्स मोस्ट ऑफ आवर फॉलोअर्स दे गॉट द नाइस डिग्री फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड, दैट डिग्री इज कॉल्ड हिज नेम इज बीएससी डिग्री। तो पत्रकार ने एकदम आश्चर्यचकित हो गए सुनकर कि अरे मैंने बताया कि सब इलिटरेट है लेकिन ये स्वामी जी ने बताया कि सब बीएससी डिग्री प्राप्त हो गए। तो पत्रकार ने फिर पूछा स्वामी जी कैन यू एक्सप्लेन दिस, बोलते यस आई एम रेडी टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग दैट यू कैन दैट यू विल क्लियर एवरीथिंग। मैंने मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीका से वो लोगों ने ये बीएससी डिग्री को प्राप्त किया। तो गोपाल जी ने बताया बीएससी का अर्थ क्या होता है कि बाहर का दुनिया में भौतिक दुनिया में बीएससी को कहते हैं कि बैचलर ऑफ साइंस, मतलब 14 क्लास तक पास हो कि 15 क्लास तक होता है आजकल। तो लेकिन भक्ति मार्ग में जो भक्ति मार्ग में आए वो लोग सब बीएससी डिग्री प्राप्त की। किस तरीके से बीएससी डिग्री प्राप्त की, बी का अर्थ होता है भगवद गीता, एस का अर्थ होता है श्रीमद भागवतम और सी का अर्थ होता है चैतन्य चैतन्य, मतलब कोई भी भक्त होता है तो उन्होंने बीएससी मतलब ये तीनों ग्रंथ को अध्ययन कर लिए। इसके लिए कोई भी भक्त मूर्ख नहीं होता है, भक्त मतलब निश्चित रूप से उन्होंने बीएससी डिग्री को प्राप्त किए। तो पत्रकार ही वॉज सरप्राइज, एकदम स्तंभित हो गए बात सुनकर, बोलते स्वामी जी कैन यू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। तो उन्होंने पत्रकार ने बड़ा गंभीर रूप से पूछने लगे कि स्वामी जी आप फिर इसको बताइए, बोलता है कि मैंने आपको जो भी कुछ बताया आप समझ नहीं पाए हो। तो पत्रकार ने पूछा मैं समझ पाया हूं लेकिन अब मैं डिटेल्स में जानना चाहता हूं इसका ऊपर। तो प्रभुपाद ने बताया कि बुरा मत मानना, आपने कितने तक पढ़ाई की हो, सबका सामने प्रभुपाद जी उनको पूछ लिए। जो पत्रकार आए वो लंदन का एकदम क्लास वन एक न्यूज पेपर का पत्रकार है, जो न्यूज़पेपर से उन्होंने आए थे उस न्यूज़पेपर का नाम था टाइम एंड फ्लाइट बोल के, जो लंदन में आज भी क्लास वन न्यूज़पेपर है। तो डोबा जी ने उनको पूछा बुरा मत मानिएगा मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपने तो मेरे को इतने सारे प्रश्न पूछा है, जय श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। बुरा मत मानिएगा कि मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपने तो मेरे को इतने सारे प्रश्न पूछा है। हाँ नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क, बताए आप पूछ सकते हो मेरे को। बोलता मैं सबका सामने आपको पूछ रहा हूँ कि आपने तो मेरे को बोल दिया कि आपका पूरा जितने सारे फॉलोअर्स है मोस्ट ऑफ द फॉलोअर्स है मोस्टली इलिटरेट, तो जितने सारे भक्त है सब मूर्ख व्यक्ति हैं, लेकिन मैंने आपको पूछ रहा हूँ कि आपने कितने डिग्री तक प्राप्त किए हो, हाउ मच डिग्री यू गट। तो पत्रकार ने बोला कि स्वामी जी आई एम जर्नलिस्ट, आई एम ए क्लास वन जर्नलिस्ट, मैं एक पहला श्रेणी का एक पत्रकार हूं, मैंने हाउ कैन यू से लाइक दिस, आपने कैसे ऐसा मेरे को पूछ सकते हो। आपने डिग्री की हो, जर्नलिस्ट डिग्री आपने प्राप्त की हो, लेकिन जिसके पास ये बीएससी डिग्री का कुछ ज्ञान नहीं है, कोई भी डिग्री अगर उनको पास रहे दैट डिग्री कॉल्ड इज जीरो डिग्री। तो एकदम आश्चर्यचकित हो गए सुनकर, स्वामी जी मैंने इतना तक मैंने पढ़ाई किया, मैंने यूनिवर्सिटी तक गए, मैंने एमए फिलोसॉफी किया हूं, उसके बाद मैंने जर्नलिस्ट डिग्री प्राप्त किया हूं और आप मेरे को बोल रहे हो कि आई एम ए जीरो डिग्री। तो गोपाल जी ने बताया कि यस, फिर भी उन्होंने तो बहुत सुंदर इसका इंटरव्यू आया पेपर में। तो गोपाल जी बताया यस तो फिर उन्हें अवस्तंभित हो गए। तो प्रभुपाद जी बताए यस 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 आई एम टेलिंग यू थ्री टाइम्स यस 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 मीन्स व्हाट एवर आई सेड दैट इज 100% ट्रू। मतलब जो मैंने बताया हूं वो 70% ठीक है, ठीक मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपने भले भी बहुत सारे डिग्री आपने प्राप्त किए हो लेकिन आपने एक बीएससी डिग्री को प्राप्त नहीं किए। मतलब आपने भगवत गीता श्रीमद भागवतम चैतन्य चैतन्य का कोई भी आज तक अपना अध्ययन नहीं किया हो, जिसके लिए आपके पास जितने सारे डिग्री है सब डिग्री का वैल्यू हो गया जीरो। तो मतलब कोई व्यक्ति अगर सोच ले, भौतिकवादी व्यक्ति, आज का दुनिया में भी ऐसे चलते रहते कि बाहर का दुनिया में तो सबका मन में ये भावना रहते कि भक्त मतलब इसका कुछ काम धंधा नहीं है, इसके लिए भक्ति मार्ग में आ गए, मंदिर में आ गए, मंदिर में सब रहना खाना पीना सब कुछ मिलता है बोल के। लेकिन ये नहीं है, भक्त मतलब उनका पास जरूर निश्चित रूप से ये तीनों डिग्री है, बीएससी डिग्री, जो कि प्रभुपाद जी इस श्लोक का एकदम अंतिम में इसका वर्णन किया है। बीएससी डिग्री हर भक्त का एक पहला करिकुलम जिसको बोलते हैं, करिकुलम मतलब पहला डिग्री होता है बीएससी। बाद में और कुछ ज्यादा स्टडी करे तो और डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, एक मिनिमम क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं। जैसे कि 10 क्लास कोई पास हो गए कि कोई 12 क्लास पास हो गए तो उसको कहते हैं कि 10 क्लास पास है 12 क्लास पास है। तो कोई भी हरे कृष्ण भक्त मतलब उनके पास एक डिग्री जरूर है, दैट इज कॉल्ड बीएससी डिग्री। तो गोपा जी ने बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाए, मैं वही पढ़ रहा था जो इसमें तात्पर्य में लास्ट में प्रभुपाद जी यही वर्णन किए है कि ये तीनों डिग्री सबसे बड़ा जरूरी डिग्री होता है। तो आज का ये श्लोक में वर्णन किए है कि खुर्शीद महाराज को सब कुछ पता थे, फिर भी उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को पूछने लगे कि आज का दिन में ऐसा कोई जीव है जो कि नंद महाराज के गुण को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इसमें वर्णन किया है कि नित्य सिद्ध अवस्था, नित्य सिद्ध को दो प्रकार में विभाजित किए हैं, जो काल कमल वो बता रहे थे कि पहला जो है नित्य सिद्ध और दूसरा है साधन सिद्ध। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये नंदो और जसोदा ये तो नित्य सिद्ध है लेकिन कोई भी जीवात्मा ये नित्य सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं? उनका मन में प्रश्न आए। कल का श्लोक का लास्ट में उसमें वर्णन किया है कि कोई भी, मैं तो समझ गया हूं कि नंदो महाराज और जसोदा मैया ये नित्य सिद्ध है, मतलब नित्य सिद्ध का अर्थ होता है ये भगवान का अंश है, और जो कि दिन रात भर भगवान का नाम कीर्तन श्रवण कर रहे हैं, भगवान का नाम गुण कीर्तन को स्मरण कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कि नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध करोए आलाय। तो परीक्षित महाराज का मन में प्रश्न आया कि नित्य सिद्ध तो मैं समझ गया हूं नित्य सिद्ध, लेकिन ऐसा कोई जीवात्मा हो जो कि ये नित्य सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है? तो उसका प्रश्न का उत्तर सुखदेव गोस्वामी पाद दे रहे कि सिद्ध दो प्रकार का होता है, जो कि काल कमलचंद को बताए बड़े अच्छे तरीके से कि चित कना चित शक्ति के द्वारा चित तरीका से आए। तो नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध, नित्य सिद्ध का अर्थ है जो कि भगवान का अंश है, जो कि हर समय भगवान का कथा भगवान का स्मरण कर रहे उसको कहते हैं नित्य सिद्ध। और साधन सिद्ध किसको कहते हैं? जो कि पूर्ण कर्म और भगवत भक्ति के द्वारा ये साधन सिद्ध को प्राप्त किए, भक्ति को प्राप्त किए, पूर्ण कर्म तथा साधन भक्ति द्वारा जो भक्ति को प्राप्त किए उसको कहते हैं कि साधन सिद्ध भक्ति। तो कल कमलेश वो बताया कि संबंध अभिधेय प्रयोजन इसके ऊपर भी वर्णन किए थे। तो ये साधन सिद्ध भक्ति, साधन सिद्ध भक्ति किस तरीके से होता है ना, पूर्ण कर्म प्राप्त होने के द्वारा और भक्ति के चर्चा के द्वारा कोई व्यक्ति साधन सिद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो द्रोण और धारा, प्रभुपाद जी कहते कि ब्रह्मा जी ही इज ए मास्टर ऑफ ब्लेसिंग्स, मतलब ब्रह्मा जी है जो कि कोई भी व्यक्ति अगर ब्रह्मा जी के पास आए कुछ भी मांगे तो ब्रह्मा जी उसको आशीर्वाद दे देते। इसके लिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी इज कॉल्ड इज ए मास्टर ऑफ ब्लेसिंग्स। आगे चलते तात्पर्य में ब्रह्मा जी बहुत सुंदर वर्णन किए है कि ब्रह्मा जी लाइक एज ए मास्टर ऑफ ब्लेसिंग्स, मतलब ब्रह्मा जी के पास अगर कोई भी आए ब्रह्मा जी उसको आशीर्वाद दे देते। तो द्रोण और धारा ये दोनों तपस्या की थी, व्रत की थी, इस व्रत के द्वारा संतुष्ट हो गए ब्रह्मा जी ने। अब कुछ बर मांगे ये दोनों, क्या बर मांगे, या मैं कृष्ण का माता पिता बनकर आविर्भूत होना चाहता हूं। श्री भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन के इस ऊपर कि द्रोण और धारा व्रत के द्वारा कुछ पकड़ व्रत किए थे, जिस व्रत में संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उनको तथास्तु आशीर्वाद दे। किस प्रकार व्रत किए थे, भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन कर रहे कि व्रत तीन प्रकार का व्रत होते हैं। जैसे कि हम लोग एकादशी व्रत करते हैं, जन्माष्टमी व्रत होता है, निष्णु एकादशी होता है, एक प्रकार का व्रत है। व्रत का वर्णन भक्तिविनोद ठाकुर शास्त्र में वर्णन की कि व्रत तीन प्रकार का होती है। पहला व्रत का नाम है शारीरिक व्रत, दूसरा व्रत का नाम है सामाजिक व्रत, और तीसरा व्रत का नाम है पारमार्थिक व्रत। तीन प्रकार व्रत का वर्णन शास्त्र में वर्णन किया है। भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षा ग्रंथ में वर्णन किए है कि ये द्रोणों और धारा पारमार्थिक व्रत के द्वारा ब्रह्मा जी को संतुष्ट किए थे। ब्रह्मा दिकित पूर्व नाश तव कौतुबम, इसमें वर्णन की है कि ब्रह्मा जी का ये पारमार्थिक व्रत के द्वारा ये द्रोण और धारा संतुष्ट किए थे। जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए तो ब्रह्मा जी प्रश्न पूछने लगे कि कुछ वर मांगो, आगमो अच्छायितु तनो, आगमो अच्छायितु तनो बड़ो मादम। ठाकुर बहुत ही सुंदर इसके चैतन्य शिक्षा ग्रंथ में व्याख्या किए थे, जैसा कमलेश में बता रहे थे कि बल्लभाचार्य टीका में उन्होंने इसके ऊपर वर्णन करे। भक्तिविनोद ठाकुर विशेष रूप से दशम स्कंद का ऊपर भक्तिविनोद ठाकुर ने ग्रंथ रचना की, जिस ग्रंथ का नाम है भक्ति विनोद वाणी वैभव और चैतन्य शिक्षा में। विशेष रूप से चैतन्य शिक्षा ग्रंथ में भक्तिविनोद ठाकुर दशम स्कंद का ऊपर अपना तात्पर्य विश्लेषण किया। इस व्रत को भक्तिविनोद ठाकुर ने तीन भाग में विभाजित किए। उन्होंने वर्णन किए कि पारमार्थिक व्रत के द्वारा जन तथा धारा ब्रह्मा जी को संतुष्ट किए थे। जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए तब उन्होंने पूछने लगे कि कुछ वर मांगो। तो ब्रह्मा जी तो मास्टर ऑफ ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद देने के लिए उस्ताद है, तो क्योंकि उनको प्रजा सृष्टि करना है तो कुछ वर मांगे। तो क्या वर मांगे, न वर मांगे कि आप मेरे को ऐसा कुछ वर दे दो, ऐसा कुछ आशीर्वाद दो जिसके द्वारा मैंने कृष्ण का माता पिता हम दोनों बन सकते हैं। कृष्ण का माता पिता बनने का वर मांगे ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी कहेगी कि तथा अब दोनों ये धारा विशेष वर प्राप्त होकर कृष्ण का माता पिता बने। आज जब कृष्ण का माता पिता बने, मतलब भगवान का जन्म तो दिव्य जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्व तकता देह पुनर्जन्म नहीं थी महामे थी छोड़ना, भगवान का तो हर कार्य दिव्य रहते हैं। भगवान ने इस तरीके से योजना बनाई, जब मैं आविर्भूत हूंगा मेरा पहले मेरा माता पिता आविर्भूत हो जाते हैं। जैसे उस दिन जगन को बता रहे थे शिष्य जगन पू ने दिन क्लास में बता रहे थे कि भगवान ने एक योजना बनाए, क्या योजना बनाए कि भगवान एक प्लानिंग बनाए कि एक कुछ ड्रामा करना है, कुछ सिनेमा बनाना है, तो सिनेमा बनाने में कुछ एक्टर एवं एक्ट्रेस वी नीड। जगन पू उस दिन बता रहे थे कि वी नीड सम एक्टर एंड एक्ट्रेस, मतलब हमारे चाहिए कुछ एक्टर अभिनेता तथा अभिनेत्री। तो भगवान का भी ये लीला में भगवान का, क्योंकि भगवान का हर कार्यक्रम जो होता है दिव्य,
भगवान ने स्वयं बताया कि मैं अजो शाश्वत रहित अजो भी शन्न वायात्मा, मैं अजो हूं शाश्वत, मेरा कोई मेरा हर चीज दिव्य, फिर भी दिव्य होने का नाते भी भगवान कुछ योजना बना देते हैं और इस योजना का फल जो है यह है द्रोण तथा धरा। इस तरीके से जसोदा मां नंद महाराज परिचित महाराज ने प्रश्न पूछा था सुखदेव गोस्वामी को, ये नंद महाराज जसोदा मां तो ये नित्य सिद्ध है, लेकिन ऐसा कोई जीवात्मा हो जो कि ये नित्य सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, ये उनका प्रश्न था। तो सुखदेव गोस्वामी ये प्रश्न का उत्तर आज के श्लोक में दे रहे हैं। इस तरीका से ना द्रोण और धरा जो ब्रह्मा जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हो गए थे कि तथास्तु, आगे आगे चलते श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे कि जब उन्होंने आशीर्वाद मांगा तो ब्रह्मा जी ने बोला कि तथास्तु ठीक है, ब्रह्मा जी का तथास्तु मतलब सब एवरीथिंग फुलफिल, सब कुछ एकदम बराबर हो गए। ये नंद और जसोदा ये तो दोनों नित्य सिद्ध हो गए, लेकिन ये जीवात्मा, ये जीवात्मा कैसे नित्य सिद्ध हो सकता है? तात्पर्य में बोबा जी लिखे हैं कि जीवात्मा के द्वारा कोई नित्य सिद्ध अवस्था प्राप्त करना मुश्किल है। तो कौन सा अवस्था प्राप्त कर सकता है जीवात्मा? ना जीवात्मा नित्य सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन नंद जसोदा का भावना को आपने हृदय में प्रकटित कर सकता है। नंद जसोदा का भावना, वात्सल्य प्रेम का जो भावना थी, उसी भावना को अपना हृदय में प्रकटित कर सकते हैं। ये सुखदेव को सही बात वर्णन की है। तो जीवात्मा के द्वारा कभी नित्य सिद्ध होना संभव नहीं है। जैसा कि भक्ति ठाकुर गाते हैं कि सपार्षद शिव धाम सह अवतरी, भगवान आने का पहले भगवान एक योजना बना लेते कि मेरे को आना है। और भगवान क्यों आते हैं? साधु नाम विनाशाय चतुष्टिताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युग युग। भगवान आने का पहले योजना बना लेते हैं कि मेरे को इस तरीका से लीला करना है। जैसे कि जगजीत उस दिन बता रहे थे कि कोई पिक्चर बनाने के लिए, कोई ड्रामा करने के लिए वी नीड सम एक्टर एंड एक्ट्रेस, मेरे को कुछ अभिनेता तथा अभिनेत्री का जरूरी होता है। तो भगवान को भी इस लीला को कार्य पर इफेक्टिव करने के लिए भगवान को भी कुछ पार्षद चाहिए था। इसके लिए भगवान अपना अपना पार्षद को भगवान ने चुन लिया, अपना अपना पार्षद को भगवान ने चुन लिया। जैसे कि नंद जसोदा को चुन ली थी, जबकि बुसदेव को चुन ली थी, इसी तरीके से भगवान ने चुन लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु एक कलयुग में अवतरित होने का पहले उन्होंने अपना अपना पार्षद बिंदु को अलग अलग जगह में उन्होंने अवतीर्ण किया। सपार्षद शिव धाम सह अवतरी, अपना अपना पार्षद को अलग अलग जगह में उन्होंने प्रकटित कराए और प्रकटित कराने के बाद सबको उन्होंने लेकर आए मायापुर धाम में, जहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु लीला विलास की थी, जिसके लिए कहते थी अद्यावधि लीला करें श्री गौरंग राय कोनो कोनो भगवान देखी बड़े पाए। आज का दिन में भी ये भगवान का लीला विलास चलते रहते हैं। जो भगवान व्यक्ति है वो ये लीला को भाग ले सकते, वो दर्शन भी कर सकते। जैसे कि ओबीराम गोपाल ठाकुर इतने एक महान महान वैष्णव जो कि गोल लीला तथा ब्रज लीला में एक ही देह में अवतारित हुए थे, एक ही देह में, जैसे द्वादश गोपाल के गोपाल है ओबीराम गोपाल ठाकुर जो कि ब्रज लीला में एक गो, आज उसी अभियान गोपाल ठाकुर इस गौर लीला में आकर द्वादश गोपाल रूप लिए, एक ही देह में आ गए, क्योंकि गौर लीला और कृष्ण लीला में एक ही चरित्र है। गोपा जी वर्णन कर रहे कि अभियान गोपाल ठाकुर एक ही चरित्र जो कि ब्रज लीला तथा गौर लीला में एक ही रूप ने, एक ही देह लेकर उन्होंने आए, और किसी का ऐसा नहीं है। तो भगवान को लीला करने के लिए उनका कुछ सहचर मतलब कोई असिस्टेंट चाहिए, जिसके लिए भगवान ने इस तरीके से योजना बनाई। और
इस योजना का फल जो है ये नंद महाराज जशोदा माँ वसुदेव देव की अलग अलग। देखिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में प्रकटित हुए तो उनका कोई जरूरी नहीं था कलयुग में प्रकटित होने का, कलो दोषे निधि राजन, फिर भी महाप्रभु इसी कलयुग में आपने को प्रकटित करा है। इसके लिए ना प्रकटित करने का एक ही कारण था कि उनको देखकर व्यक्ति के मन में भक्ति भाव उदय है। भक्तिवेद ठाकुर बहुत ही सुंदर इसका वर्णन किए इस ग्रंथ में कि क्यों श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आपने को भक्त रूप लेकर प्रकटित किया। भगवान अवतारित होते हर युग में, परित्राणा साधु नाम बिना सहज दुष्कृतम धर्म संस्थापना संभवामी युगे युगे। भगवान हर युग में आपने को अवतारित करते हैं, प्रकटित कराते हैं, लेकिन कुछ उद्देश्य रहता है उसका, कुछ लक्ष्य है, कुछ गोल रहता है उसमें। ये नंद जशोदा के द्वारा भगवान ये बुद्ध जीव को सिखाए कि द्रोणों और धारा ये पारमार्थिक व्रत के द्वारा ब्रह्मा जी को संतुष्ट किए थे। व्रत को भक्तिविनोद ठाकुर तीन भाग में विभाजित किए, बहुत ही सुंदर इसका विश्लेषण किया तात्पर्य में कि पहला व्रत का नाम दिया कि शारीरिक व्रत, मतलब शरीर के द्वारा जो व्रत को पालन करना होता है उसको कहते हैं कि शारीरिक व्रत। दूसरा व्रत का नाम दिए है सामाजिक व्रत और तीसरा व्रत का नाम है पारमार्थिक व्रत। ये द्रोणों और धारा पारमार्थिक व्रत करने के द्वारा ब्रह्मा जी को संतुष्ट किए थे। और तीन प्रकार व्रत का जो वर्णन है शास्त्र में, पहला है शारीरिक व्रत। शारीरिक व्रत किसको कहते हैं, जैसे कि मंगलादि आने का पहले सबको नहाना पड़ता है, इसको कहते हैं कि प्रातः स्नान, ये एक प्रकार शारीरिक व्रत। ठाकुर जी को परिक्रमा करना ये भी एक प्रकार शारीरिक व्रत। ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करना, अष्टांग प्रणाम जिसको कहते हैं, ये भी एक प्रकार शारीरिक व्रत। तो किसी का मन में प्रश्न आ सकता है कि ठाकुर जी को परिक्रमा करना, ठाकुर जी को दंडवत करना और प्रातोष्ठान करना, इसमें क्या भक्ति लाभ होता है। भक्ति विनोद ठाकुर इसमें वर्णन करेगी, ये व्रत का पहली अंग होता है। व्रत को तीन भाग में विभाजित किए, पहला व्रत का नाम है कि शारीरिक व्रत। ये शारीरिक व्रत को भी भक्तिवेद ठाकुर तीन भाग में विभाजित किए, प्रातोष्ठान शारीरिक व्रत, दूसरा है साष्टांग शारीरिक व्रत, तीसरा है दंडवत शारीरिक व्रत, परिक्रमा शारीरिक व्रत। तो किसी का मन में प्रश्न आ सकते कि प्रातोष्ठान करने में किस तरीके से व्रत होता है। तो भक्तिवेद ठाकुर इसमें वर्णन कर रहे कि ये शारीरिक व्रत का जो अंग है वो है प्रातोष्ठान। जैसे बाहर कभी दुनिया में बोलते हैं ना कि आल्ली राइज आल्ली टू बेड, मतलब जल्दी से उठना शरीर के लिए अच्छा होता है। व्यक्ति देखिए सुबह उठकर जॉगिंग करने के लिए जाता है बाहर में, कितने सारे मुंबई में लाफिंग क्लास है, हंसने के लिए भी व्यक्ति लाफिंग क्लास में ज्वाइन हो जाता है। कोई भी मतलब समुद्र का किनारे जाकर देखिए एक से एक लाफिंग क्लब आजकल मुंबई में है, तो हंसने के लिए क्लब बना दिए, जॉगिंग क्लब है, कितने सारे जॉगिंग करने के लिए क्लब बना लिए। तो ये भी एक प्रकार का शारीरिक व्रत। प्रातस्नान के द्वारा व्यक्ति, भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि प्रातस्नान के द्वारा किस तरीके से प्रातस्नान में हमारा भक्ति में आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, आज दंडवत प्रणाम के द्वारा किस तरीके से, परिक्रमा के द्वारा किस तरीके से हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर इसी ग्रंथ में वर्णन किए, प्रातस्नान के द्वारा शरीर शुचिता तब है, शरीर शुचिता होती है, पूरा शरीर बिकम प्यूरिफाई। आपका बॉडी सूचित हो जाता है, मतलब एकदम स्फुटित हो जाता है, जिसको बॉडी बिकम प्यूरिफाइड हो जाता है। और शुद्ध शरीर में उसमें वर्णन किया है कि सुबह प्रातस्थान करने में भक्ति में कैसे आगे प्रगति हो सकता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर इसमें वर्णन कर रहे हैं कि सुबह नहाने में, सुबह अगर कोई व्यक्ति जाकर नहाकर धोकर आए मंदिर में, तो उसमें पवित्र रहता है शरीर, और इस पवित्र शरीर में भगवान को दर्शन करना, भगवान को परिक्रमा करना, भगवान को प्रणाम करने में भगवान का अधिक से अधिक, अधिक से अधिक भगवान कृपा बरसाते रहते हैं। क्योंकि सात्विक अवस्था जो है एकदम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रहते हैं। इसमें वर्णन की है कि इसके लिए सुबह उठकर नहा के धो के मंदिर में आना भक्ति का सबसे बड़ा प्रगति है। सात्विक अवस्था में भगवान भी जब सात्विक अवस्था में रहते हैं, तो सात्विक अवस्था भगवान तो हर समय सात्विक है, शुद्ध सत्ता में रहते हैं भगवान, फिर भी जब सुचित अवस्था में आप हो उसी समय भगवान का कृपा मिले तो आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और वर्णन किए कि ये तो गए प्रातः स्नान, और परिक्रमा करने से क्या फायदा मिलते हैं, परिक्रमा का अर्थ तो सबको पता है, और फिर भी भक्ति ने ठाकुर इसमें वर्णन किया कि ठाकुर जी को परिक्रमा करने में क्या फायदा है, इसमें भक्ति मार्ग में कैसे आगे बढ़ सकते हैं ठाकुर जी को परिक्रमा करने में। विशेष रूप से सुचिता के साथ अगर कोई व्यक्ति ठाकुर जी को परिक्रमा करे तो ठाकुर जी सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं उसकी दृष्टि का। इसके लिए सुबह प्रातस्थान के बाद ठाकुर जी को प्रणाम करने के बाद व्यक्ति ठाकुर जी को धन्यवाद प्रणाम मानते कि ठाकुर जी सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं उसी का व्यक्ति का ऊपर। इसको कहते कि सामाजिक व्रत, और दूसरा व्रत का इसको कहते कि शारीरिक व्रत। दूसरा व्रत का नाम है सामाजिक व्रत। सामाजिक व्रत मतलब जैसे कि आपने एकादशी वगैरह की है, इसको कहते कि सामाजिक व्रत। और एक वर्णन की है भक्ति विनोद ठाकुर कि सामाजिक व्रत को भक्ति विनोद ठाकुर विविध प्रकार व्यंजनाय, मतलब सामाजिक व्रत को भक्ति विनोद ठाकुर ने तीन प्रकार में इसको विभाजित किया। सामाजिक व्रत को तीन प्रकार क्या क्या है ना, पहला है कि ये एकादशी व्रत करना, दूसरा है कि भगवान का कोई पार्षद का आविर्भाव तथा तिरोभाव तिथि में व्रत रखना। क्योंकि भगवान का जो पार्षद है उनका आविर्भाव तथा तिरोभाव में व्रत रखना ये एक भक्ति के लिए आपके लिए एक अच्छा है। क्यों, भक्ति विनोद ठाकुर इसमें वर्णन कर रहे कि भगवान का जो नित्य पार्षद, इसके वर्णन किया कि सिद्ध दो प्रकार होता है कि नित्य सिद्ध और साधन सिद्ध। जो नित्य सिद्ध है भगवान का अंश है, मतलब भगवान का जो पार्षद है भगवान का ही अंश है। जो नित्य सिद्ध व्यक्ति वो भगवान का अंश है, तो इसी प्रकार नित्य सिद्ध व्यक्ति के आविर्भाव तथा तिरोभाव तिथि में अगर आपने उपवास किए थोड़ा समय तक, जैसे कि हमारा होता है ना कि गौर किशन दास बाबूजी महाराज, जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज, भक्तिशाल शशी ठाकुर, श्री गोपाल जी, इसका आविर्भाव तथा तिरुभाव स्थिति में 12 बजे तक उपवास रहते हैं, मंदिर में अनाउंस होता है सुबह कि आज 12 बजे तक उपवास है। तो उपवास का फायदा क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर इसमें वर्णन कर रहे हैं कि ये नित्य सिद्ध पार्षद, ये नित्य सिद्ध पार्षद का उपवास रखना जरूरी होता है। क्यों ना, नित्य सिद्ध जो है भगवान का अंश है, इनके साथ ये नित्य सिद्ध व्यक्ति, नित्य सिद्ध जो पार्षद ये और भगवान, ये दोनों में थोड़ा भी कुछ अंतर नहीं होता है। पार्षदों का आविर्भाव तथा तिरोभाव तिथि में अगर हम लोग उपवास करे तो भगवान का अंश है, इसके लिए स्वयं भगवान आपका ऊपर खुश होकर आपको इतना प्रेम वितरण करते कि भगवान स्वयं आकर आपको हाथ पकड़ के भगवान के धाम तक लेकर जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर इसमें क्लियर लिखे कि कोई भी भगवान का नित्य सिद्ध पार्षद का दिन अगर आपने उपवास किए, भगवान आपका ऊपर इतना संतुष्ट रहते हैं कि भगवान स्वयं आकर हाथ पकड़कर आपको भगवान धाम तक लेकर जाते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु का बहुत सारे अंतरंग प्रिय पार्षद जिसका हम लोग आविर्भाव तिरुभाव तिथि मनाते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर इस जगह में लिखे हैं कि कोई भी पार्षद का आविर्भाव तथा तिरुभाव तिथि में अगर आपने उपवास किए तो उसी उपवास का फल किस तरीका से मिलते हैं, तो उसी उपवास का फल स्वयं महाप्रभु खुश होकर महाप्रभु आपको हाथ पकड़कर इसी धड़ाधाम से महाप्रभु का धाम तक आपको लेकर जाते हैं। तो महाप्रभु का पार्षद में उपवास करने में इतना फायदा है। और तीसरा व्रत को वर्णन किए है कि पारमार्थिक व्रत। ये पारमार्थिक व्रत मतलब जैसे कि जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, नृसिंह चतुर्दशी हो, रामनवमी हो, इसको कहते हैं कि पारमार्थिक व्रत। तो ध्रन और धरा ये पारमार्थिक व्रत के द्वारा ये शास्त्र में वर्णन है कि किस तरीके से कौन सा पारमार्थिक व्रत किए थे। ये भक्तिविनोद ठाकुर भी तात्पर्य में ये लिखे नहीं है कि कौन सा व्रत के द्वारा उन्होंने ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया, लेकिन लिखा है कि पारमार्थिक व्रत के द्वारा ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। ध्रन और धरा कौन सा पारमार्थिक व्रत किए है इसका कोई वर्णन नहीं है। जब परीक्षित महाराज पूछने लगे जे पूर्ण कर्म और भगवत भक्ति अनुशीलन के द्वारा ये साधन सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, तो पूर्ण कर्म का वर्णन बहुत सारे शास्त्र में वर्णन भी किए हैं। भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षाविद ग्रंथ में पूर्ण कर्म को द्वादश प्रकार में विभाजित किए, द्वादश भाग मतलब 12 भाग में पूर्ण कर्म को भक्तिविनोद ठाकुर ने विभाजित किया है। द्वादश प्रकार वर्णन पूर्ण कर्म का होता है। तो प्रधान प्रधान पूर्ण कर्म जो है, जो पूर्ण कर्म को द्वादश प्रकार का विभाजित किया है भक्तिविनोद ठाकुर, लेकिन इसमें से भी मेन जो पूर्ण कर्म है, जैसा कि पूर्ण कर्म तो हर व्यक्ति को पूर्ण कर्म करना चाहता है, पूर्ण कर्म करने से क्या होता है, स्वर्ग लाभ होता है। भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन किए कि किसी को अगर स्वर्ग तक पहुंचना है, देवता लोक तक अगर किसी को पहुंचना है तो पुण्य कर्म के द्वारा पहुंच सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मैंने तो बहुत सारे सेवा किए हूं, मैंने माँ बाप का सेवा किए हूं, मैंने स्कूल बनाया, मैंने एक हॉस्पिटल बनाया, मैंने एक नर्सिंग होम बना दिया हूं जिसमें कितने सारे व्यक्ति आते हैं, मैंने उनको ट्रीटमेंट पकड़े करा देता हूं, मैंने एक स्कूल बना दिया कितने बच्चा लोग आजकल पढ़ाई करते हैं, मैंने एक ऑनर स्कूल बनाया हूं, ये किया हूं, ये सब पुण्य कर्मों का फल मिलता है। तो पुण्य कर्मों का भक्तिविनोद ठाकुर द्वादश प्रकार में विभाजित की। इसी द्वादश प्रकार में भी 10 प्रकार जो पूर्ण कर्म है वो है मुख्य, मतलब मुख्य है मेन। 10 प्रकार पूर्ण कर्म का वर्णन शास्त्र में उल्लेख है। जो है पहला पूर्ण कर्म है परोपकार करना, किसी को कुछ कार्य में मदद करना, इसको कहते हैं कि परोपकार करना, यह एक प्रकार पूर्ण कर्म। जैसे कि सबको पता है कि पाप करने से नरक वास होता है और पूर्ण करने से स्वर्ग वास होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर घुस गए ना तो पेपर में लिखते कि स्वर्ग तक पहुंच गए, स्वर्ग तक पहुंच गए मतलब देवता लोक तक वो उन्होंने पहुंच गए। इसी तरीके से पूर्ण कर्म को 12 भाग में विभाजित किए भक्तिविनोद ठाकुर। उसमें से भी 10 प्रकार पूर्ण कर्म मुख्य होता है मेन। पहला पूर्ण कर्म जो है वो है परोपकार करना, किसी को मदद करना कोई भी काम पे। और दूसरा पूर्ण कर्म जो है गुरुजन सेवा, मतलब माता पिता को सेवा करना, ये भी एक प्रकार पूर्ण कर्म है। जैसे कोई कहते हैं ना कि आपने अगर कोई चंदा के लिए गए, बोलते नहीं नहीं मैंने तो इतने सारे चंदा दे रहा हूं, देखो मेरा माता पिता को सेवा करो, ये भी एक प्रकार का पूर्ण कर्म होता है। गुरुजन सेवा को भक्तिविनोद ठाकुर 3 भाग में विभाजित किए। बहुत ही सुंदर पूर्ण कर्म का भक्तिविनोद ठाकुर का एक किताब है पूर्ण, कि आजकल व्यक्ति ज्यादा पूर्ण कर्म को प्रभावित हो जाता है।
कि मैंने बहुत सारे पूर्ण कर्म किया हूं, कि पूर्ण कर्म का फल क्या तक होता है, ना स्वर्ग लोक में जा सकते हैं, और उसी स्वर्ग लोक में जाने के बाद भी देवता लोक के द्वारा संतुष्ट होकर जब देवता लोक आशीर्वाद करते फिर इसी जन्म में प्राप्त होता है, और पूर्ण कर्म करने के बाद जब फिर मनुष्य जीवन प्राप्त होते हैं, भक्तिवन ठाकुर इसमें वर्णन किए कि वो मनुष्य जीवन में निश्चित रूप से वही व्यक्ति कोई ना कोई भक्त घर में उसका जन्म होता है, और उसी भक्त घर में जन्म होने के बाद भक्ति करने के द्वारा अगला जीवन में वो निश्चित रूप से भगवत धाम तक जा सकते हैं। ये मेरा कहने का नहीं है, स्वयं हमारा आचार्य भक्तिवन ठाकुर कह लेते हैं। ये गुरुजन की सेवा भक्त विनोद ठाकुर तीन भाग में विभाजित की, इसका बहुत ही सुंदर विश्लेषण है कि गुरुजन का सेवा किस तरीके से है। एक तो माता पिता को पालना तथा माता पिता को सेवा करना, ये एक प्रकार गुरुजन सेवा। दूसरा है जिन्होंने आपको पारमार्थिक ज्ञान दिलाते हैं उसको देखभाल करना तथा उसको सेवा करना, ये एक प्रकार का सेवा है गुरुजन सेवा। तीसरा है उपदेष्टा सेवायो तथा, मतलब कोई व्यक्ति अगर आपने कुछ बुरा काम कर रहे हो, कोई बुरा काम से आपको बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसको कहते हैं उपदेष्टा, मतलब फिलोसोफर, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिलोसोफर एंड गाइड, मतलब आपको तत्व के द्वारा वो समझ रहे कि बेटा आप ऐसा मत करो, ये करने से आपको गलत होता है, इसको कहते हैं उपदेष्टा तत्व करता। उपदेष्टा एक उपदेष्टा को सेवा करना हो कि एक प्रकार गुरुजन सेवा होते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर इस तरीके से पुण्य कर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से इसके विश्लेषण किए हैं। इस पुण्य कर्म करने में स्वर्ग लोक प्राप्त होता है, इसके ऊपर भक्ति शब्द सरस्वती ठाकुर बहुत ही सुंदर एक टिप्पणी बताए कि कोई भी कंजूस व्यक्ति हो, तो कंजूस व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कुछ सेवा नहीं करना चाहते, कुछ दान नहीं देना चाहते हैं, मतलब कंजूस मतलब आपने धन को एकदम इकट्ठा करके पकड़ के रखना चकना जो व्यक्ति उसको कहते हैं कंजूस व्यक्ति। किसी कंजूस व्यक्ति के सामने जाकर अगर आपने कुछ कह दिए तो उसको दान दान करने का कोई इच्छा नहीं है मन में, लेकिन उसी प्रकार कंजूस व्यक्ति को जाकर आपने कहा कि आपका नाम से एक स्कूल बनाना है, आपका नाम से एक हॉस्पिटल बनाना है, तो व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार व्यक्ति से धन लेकर आपने अगर कोई हॉस्पिटल बनाए, कोई स्कूल बनाए, तो वो व्यक्ति का कल्याण होता है। इस तरीके से ना वो व्यक्ति कुछ अच्छा काम किए, मतलब पुण्य कर्म किए, इस पुण्य कर्म के द्वारा वो स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है, और उसी स्वर्ग लोक में जाने के बाद फिर जब अगले मनुष्य जीवन इसको प्राप्त होगा निश्चित, तब मनुष्य जीवन में आकर तो भगवत भक्ति जन संगत, मतलब भक्ति मार्ग में कोई भक्ति घर में, मतलब भक्त गृह में उसका जन्म होता है, और उसी भक्त गृह में जन्म होने के बाद भक्ति अनुशीलन के द्वारा वो भगवत मार्ग तक वो जा सकते हैं। भक्ति साधन सरस्वती ठाकुर बताता है इसमें टिप्पणी में कि अगर कोई कंजूस व्यक्ति हो जिन्होंने कुछ दान दान कभी करना नहीं चाहते, किया भी नहीं, उसी प्रकार व्यक्ति अगर कभी कोई हॉस्पिटल बनाना भी कोई इसी प्रकार काम में मदद करते हैं तो उसको फल मिलता है। तो ये सुखदेव गोस्वामी और ये परीक्षित महाराज की कथोपकथन में बताए कि नंद महाराज जसोदा माँ जिस तरीका से नित्य सिद्ध हो गए, ये जीवात्मा कभी नित्य सिद्ध हो नहीं सकते है। तो जीवात्मा जहां से ज्यादा नंद जसोदा महाराज के जो वात्सल्य प्रेम का भाव, वो भाव को वो प्रकटित कर सकते हैं अपना हृदय में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की शील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंद। ये सब किताब जो है भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति शांत सरस्वती ठाकुर का भागवतम के ऊपर बहुत सारे टिप्पणी के ऊपर बताया है। तो अभी भक्ति विकास महाराज ने बहुत प्रयास कर रहे हैं इसको इंग्लिश में रचना करने के लिए, आज तक किए मेरे को पता नहीं है। हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद की जय। वंशा